ॐ शांति तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली योग। प्यारे बाबा ने हम बच्चों के भाग्य निर्माण के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है और सेवा करने का हमें गोल्डन चांस दिया है। लेकिन जब हम बहुत सेवा में व्यस्त हो जाते हैं तो कभी कभी तन और मन की थकावट अनुभव होती है। बहुत बिजी होते हैं तो मन पर भी बोझ आता है, मन थकता है, और जब मन थकता है तो फिर तन भी थकता है। तो तन और मन की थकावट मिटाने के लिए आवश्यक हैं सेवा और योग का बैलेंस रखना। जब सेवा के साथ साथ हम योग का अभ्यास करते रहते हैं तो तन और मन की थकावट उतनी हमें नहीं महसूस होती है। योगाभ्यास से हम शक्तियां लेते हैं और सेवा के माध्यम से वो यूज करते जाते हैं और आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अगर ये सेवा का और योग का बैलेंस हम नहीं रखते हैं तो हमारे पास से जो योग की शक्तियां जमा होती हैं उन शक्तियों को हम सेवा के द्वारा यूज करते जाते हैं और बाद में हम स्वयं को एग्जॉस्ट महसूस करते हैं। कई बच्चे तो बाबा से दूर भी चले जाते हैं। इंग्लिश में उसको बर्न आउट कहते हैं। तो योगाभ्यास के द्वारा शक्तियां प्राप्त करते रहे और सेवा के माध्यम से उनका प्रयोग करते रहे, उनको यूज करते रहे और आगे ही बढ़ते रहे। मुझे याद है बाबा ने कहा है, आगे चलकर आप इतना बिजी हो जाएंगे, इतना बिजी हो जाएंगे जो आपको 4 घंटा आराम करने के लिए नहीं मिलेगा। ये बाबा के बोले, इतने सेवा में बिजी होंगे तो 4 घंटा भी आराम का नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा, 4 मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास के द्वारा ऐसा महसूस होगा कि मैंने 4 घंटा आराम कर लिया। जब देह से न्यारे हो जाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, स्वयं को शक्तियां मिलती हैं और हम सेवा में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा जो प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, जब खेलने लगते हैं तो थोड़े इंटरवल के बाद सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं स्वयं को एनर्जाइज करने के लिए। बीच बीच में ऐसा ड्रिंक लेते हैं। और खेलते रहते हैं। तो ऐसे हम सेवा में जब बिजी रहते हैं तो बीच बीच में थोड़ा इंटरवल से एक मिनट दो मिनट योग का अभ्यास करते हैं तो स्वयं को हम एनर्जाइज करते हैं। एक बात मुझे याद है, पहली बार मधुबन में ईस्टर्न जोन से 2,500 बाबा के बच्चे आए थे। पहली बार इतना बड़ा ग्रुप मधुबन में आया था तो प्रकाशमणि दादी जी उनको दिन भर मिलती थी और उन दिनों में बाबा हफ्ते में 2 बार आते थे। जो भी बाबा के बच्चे उन दिनों में आते थे बाबा को पर्सनली 2 बार मिलते थे। हर तीसरे दिन बाबा आते थे तो दादी जी बहुत थक जाती थी इतने बड़े ग्रुप को मिलकर। तो जब बाबा मुरली चलाते थे बच्चों को मिलते थे और जब वापस जाते थे परमधाम तो प्रकाशमणि दादी जी बाबा को विदाई देने के लिए आती थी। तो जब तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं पहुंची तो बाबा ने कहा दादी जी कहां हैं? तो किसी ने कहा दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। ठीक है, जब दूसरी बार बाबा आए 3 दिन के बाद तो मुरली के बाद दादी जी को बुलाया और दादी जी को कहा देखो बच्ची अभी तो बिजी हैं, आगे चलकर इससे कई गुना बिजी हो जाएगी, एक युक्ति को अपनाओ। जब गाजियाबाद का ग्रुप मिलके चला गया और दूसरा चेन्नई का ग्रुप आ रहा है उसके बीच में कुछ एक सेकंड की गैप जरूर है, होती है गैप, एक ग्रुप उठता है दूसरा ग्रुप आता है कुछ सेकंड की गैप होती है, उस गैप में स्वयं को अशरीरीपन का इंजेक्शन लगाओ, विदेही स्थिति का अभ्यास कुछ पलों के लिए करो तो स्वयं को एनर्जी मिलेगी और उसके बाद आपको थकावट नहीं आएगी। तो दादी जी ने उस युक्ति को अपनाया और दादी जी ठीक हो गए। कहने का भाव है बीच बीच में हमें कुछ घड़ियों के लिए विदेही स्थिति का अभ्यास योग का अभ्यास करते रहने की आदत डालनी है। तो तन और मन की जो थकावट होती है वो नहीं होगी। शरीर आखिर भी मशीनरी है, कुछ समय उसको यूज करने के बाद थकावट जरूर आती है लेकिन कर्म करते हुए स्वयं को स्थूल देह के बजाय आत्मा समझते रहें और फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते रहें तो भी थकावट कम आएगी। इस युक्ति को भी हम अपना सकते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए तो शक्तिशाली योग की अनुभूति करना जरूरी है लेकिन प्रायः देखा जाता है बाबा के बच्चे हर रोज योग का अभ्यास करते हैं, मुरली सुनते हैं, सेवा करते हैं लेकिन चलते 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 थोड़ा सा कभी रोब आता है, कभी फीलिंग आती है, कभी थोड़ा सा गुस्सा आता है। क्यों भाई? हर रोज ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं, प्रभु पालना में हम पल रहे हैं तो मोटे रूप से तो हमने विकारों को जीत लिया लेकिन अभी भी विकारों के अंश वंश बाल बच्चे बाकी हैं, उनको हमें खत्म करना है, नष्ट करना है और उसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास की। साधारण योगाभ्यास से ये काम संभव नहीं होगा। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है, अभी समय की पुकार है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। हम इस हॉल में बाबा से मधुबन निवासी मिल रहे थे, 87 की बात होगी। मुरली के बाद जब हम मधुबन निवासी बाबा से मिल रहे थे तो बाबा से हमने एक डायरेक्ट बात पूछी। मधुबन निवासी बाबा से मिलते हैं तो ऑफिशियली नहीं मिलते हैं, बहुत फ्रेंडली, बहुत हिम फ्रीली मिलते हैं, दीदी को पता है। तो इसी बाबा को पूछा, बाबा शक्तिशाली योग मेरा है या नहीं, कैसे पता चले? तो बाबा ने कहा था, शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती है। पहली निशानी, शक्तिशाली योगाभ्यास में योग अग्नि के रूप में अनुभव करता है और उस अग्नि में मेरे विकर्म भस्म हो रहे हैं, ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव हमें एक तरफ होता है और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की महसूसता होती है। हल्केपन की क्यों अनुभूति होती है? क्योंकि हमारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो कम होने लगता है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी संपूर्णता के मंजिल की ओर, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, इसलिए खुशी की अनुभूति होती है। तो योगाभ्यास में ऐसी दोनों प्रकार की जब अनुभूतियां होती हैं तब कहेंगे मेरा योग शक्तिशाली है। तो ऐसे शक्तिशाली योग को बढ़ाने के लिए हमें कुछ एक बातों पर ठोस अभ्यास करना होगा। पहली बात, शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात आत्मा में हम डूब जाएं, खो जाएं। केवल ऊपर ऊपर आत्मा समझने से नहीं काम होगा, हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना। कहते हैं जितना खुद में खो जाते हैं उतना ही खुदा में खो सकते हैं। अगर खुद में नहीं खो सकते हैं, गहराई की आत्म अनुभूति नहीं कर सकते हैं, तो शक्तिशाली अनुभूति योग की नहीं होगी। इसलिए एकांत में बैठकर आत्मा को बहुत अच्छी तरह से देखें और उसमें स्थित हो जाएं। लेकिन आत्मा को देखने का परसेंटेज मैक्सिमम हो, 100% जो भान होता है उसमें से 70-80% आत्मा का भान होगा और 20-30% देह का भान होगा, उसको कहेंगे बहुत गहराई की आत्म अनुभूति करना। तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना। इस देह रूपी वस्त्र को उतार दे, भुला दे, गला दे। मैं कौन हूं? केवल एक चमकता हुआ, दमकता हुआ दिव्य सितारा। इस अभ्यास को हम घोटते रहें, पक्का करते रहें, तब शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हो सकती है। गहराई के साथ साथ शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना बहुत जरूरी है। शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात जब हम बाबा के पास परम धाम में बैठते हैं तो हमारे मन की बैठक साधारण न हो, कई बार हम देखते हैं बाबा सर्वशक्तिमान हैं और मैं साधारण आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस तरह से हम बैठते हैं तो हमें बाबा की शक्तियों का एहसास नहीं होता है। हमें क्या करना होगा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, ऐसे शक्तिशाली मन की बैठक होगी तभी बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं, शक्ति आध्यात्मिक शक्तियों के सोर्स हैं, उनसे हम अथाह शक्तियां प्राप्त करते रहेंगे और शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होगी। बाबा के पांच परम धाम में बैठते समय दो तीन बातों का ध्यान हमें रखना है, विशेष अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास में। अगर सचमुच हम शक्तिशाली योगाभ्यास करना चाहते हैं तो ये दो तीन बातों पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, कभी भी स्वयं को साधारण आत्मा समझकर बैठना नहीं है, शक्तिशाली मन की स्थिति में ही हमें बैठना है। दूसरी बात, बाबा के पास जब हम परम धाम में बैठते हैं तो कभी भी हमें हिचकना नहीं है। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो पवित्रता का सागर है, मुझ आत्मा में अपवित्रता के दाग हैं, तो मैं बाबा के समीप बैठ सकती हूं या नहीं, थोड़ा सा मन खाता है, कॉन्शियस बाइट करता है। हाँ भाई, बैठ सकते बाबा के पास, बोलिए। हाँ जी, ऐसा नहीं कभी महसूस होता है बाबा तो पवित्रता का सागर है और मुझ आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इंप्यूरिटीज हैं, कैसे मैं नजदीक बैठू बाबा के। हाँ जी, बैठ सकते हैं, मन हिचकेगा नहीं। बाबा के पास बड़े ठाठ से हमें बैठना है बिना हिचकते हुए। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है, बाबा ने मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने बाप के गोदी में ही नहीं कंधे पर भी बैठने का अधिकार होता है। तालियां तो बजाओ जरा। कितने भाग्यशाली हैं हम, रास्ते चलते चलते बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया और गोदी में बिठा दिया। कभी सोचा ये गंदा बच्चा है, विकारों के लतपत में ये गंदा हुआ है, इसको कैसे मैं अपनाऊं, सोचा? कैसा भी है आखिर भी मेरा बच्चा है। दूसरी बात, बाबा ने हम आत्माओं रूपी सजनियों को अपनाया है। सजनी कैसी भी हो, उसको अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है, इसलिए बड़े ठाठ से हमें बाबा के बाजू में बैठना है, हिचकना नहीं है। ठीक है ना भाई। दूसरी बात, शक्तिशाली योग की अनुभूति करने के लिए बाबा के स्वरूप को बहुत गहराई से और शक्तिशाली रूप से हमें अनुभव करना है। गहराई से अर्थात परम धाम में बाबा के स्वरूप को बहुत नजदीक से हमें देखना है और अनुभव करना है। बहुत समीप बैठना है, देखना है बाबा का स्वरूप कैसा है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यता के सागर है, कल्याण के सागर है, सुंदरता के सागर है, और बाबा की पर्सनैलिटी व्यक्तित्व कैसा है। बाबा का मन बहुत सुतप्रधान है, संकल्प बहुत दिव्य और शक्तिशाली क्रिएट करते हैं। बुद्धि कैसी है, बहुत दिव्य और विशाल और दुरंदेशी है, और संस्कार कैसे हैं, बहुत रॉयल और जेंटल संस्कार है। ऐसे बाबा के स्वरूप को हमने नजदीक से देखना है और अनुभव करना है। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं भाई, दो लोगों को दूसरा नाम ही नहीं मिला, क्यों भगवान को भगवान कहते हैं? हाँ जी बोलो।
बोलो ना, भाग्य बनाता है। हाँ जी, भगवान को भगवान ही क्यों कहते हैं और दूसरा लोगों को नाम ही नहीं मिला? हाँ, भाग्य विधाता है। बोलो ना, सब बड़े थे, बड़े बड़े भाई हमारे, वान माना उस्ताद, ये धनवान है, ये गुणवान है, ये हिम्मतवान है, ये आशावान है, और ये बलवान है, और ये भगवान है, सबको भगाकर ले जाने में नंबर वन उस्ताद है। इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, केवल 16,108 को नहीं भगाया, लाखों आत्माओं को भगा रहा है। बैठो मेरे पास, आओ मेरे पास, है ना भाई उस्ताद? भगाकर जाने में उसके साथ फायदा है, माल बहुत है उसके पास, इतना माल है, इतने खजाने हैं। बाबा कहते सारे संसार को मैं बांट दूं ना तो भी वो खुटते नहीं है, मैं क्या करूं, ये तो आपके लिए है भाई, फायदा है ना भाई। तो बड़े ठाठ से हम बाबा के पास जाके बैठ जाएं, मस्ती से बैठ जाएं, ठीक है ना। और तीसरी बात, शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे। प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, बाबा में और हमारे हजारों, बीच में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके बाबा हम आमने सामने की नहीं लेकिन एकदम कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें बाबा कराते हैं प्यार के आधार से। तो हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे। बाबा कहते हैं मैं केवल प्यार का सौदागर हूं। आपके पास है क्या? फकीर तो हो, किराए का मकान लेकर तो बैठे हो, क्या है बेघर माना बेघर? मैं केवल सौदागर प्यार का हूं, पक्का सौदागर। जितना मुझसे प्यार करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा, थोड़ा भी कम जास्ते नहीं होगा। लेकिन प्यार दुनिया में किससे करते हैं लोग? हाँ जी, प्यार किससे करते हैं लोग? हाँ जी, जिससे बहुत प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा के पास तो बहुत है ना भाई खजाने, तो उनसे करना चाहिए। दूसरा प्यार किससे लोग करते हैं? जो बहुत सुंदर होता है। अब वो सुंदरता का सागर है, सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार है, कितना सुंदर होगा आप सोचो तो सही। करना चाहिए ना प्यार कि नहीं? और किससे प्यार करते दुनिया में? जो प्यार करके अंत तक निभाता है, बीच भंवर में धोखा नहीं देता है, उससे लोग प्यार करते हैं। जो बीच में ठगाता है ना, धोखा देता है ना, उससे दूर भागते हैं लोग। बाबा तो हमें घर तक ही नहीं लेकिन राजधानी में लेकर छोड़ते। प्यार करना चाहिए ना भाई? और किससे प्यार करते हैं? हाँ जी, जो भगा कर ले जाते हैं। सही कह रही दीदी, कोई लल्लू पंजू से कोई प्यार नहीं करता है। ये क्या, मुझ अपने को ही नहीं संभालता, मुझे क्या संभालेगा? तो सर्वशक्तिमान है बाबा, सर्वोच्च रक्षक हैं। अगर मैं उससे प्यार करूंगा तो मेरी भी वो रक्षा करेगा। तो इसलिए हमें केवल एक बाबा से ही प्यार करना है, किसी व्यक्ति वैभव के साथ प्यार को शेयर नहीं करना है। संगम माना भगवान के संग में रहने का युग, उसको कहते हैं संगम। तो भगवान से ही प्यार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताओ? दुख हरता है। हर मुरली में कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्या पढ़िए भाई, क्यों याद करें बाबा को बताओ, क्या जरूरत है बाबा को याद करने की? हर मुरली में कहता है ना, क्यों कहता है बाबा? दूसरे को याद करेंगे तो मैं अच्छी तरह से सजा दूंगा, ऐसा भी डर आता है। क्यों भगवान से साथ प्यार करना है? पहली बात, केवल ही वो शक्तियों का सोर्स है, आध्यात्मिक शक्तियों का प्रचंड स्रोत है, सोर्स है, कोई भी आत्मा सोर्स नहीं है। ये सिद्धांत है, एनर्जी जो है ना हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ प्रवाहित होती है। अगर बाबा को याद करते हैं तो हमें शक्तियां मिलती है, आत्माओं को याद करेंगे तो हमारी शक्तियां खर्च होती है, ये तो नुकसान हो गया। और तीसरी बात, केवल एक बाबा ही एवर प्योर हैं, उनको याद करने से ही आत्मा प्योर बनती है, इसलिए बाबा को हमें याद करना है। विकर्म हमारे उसकी याद से ही भस्म होते हैं, तो बाबा हमारा कल्याण चाहते हैं, मेरे बच्चे मुझे याद करें और माला माल हो जाए और ये बोझ से फ्री हो जाए और घर में अपने निश्चिंत होके चले जाए। ऐसा कल्याण चाहने वाला मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो याद करना चाहिए ना भाई, प्यार करना चाहिए ना कि नहीं? योग है क्या? योग माना परमात्मा से प्यार करना सीखना, और है क्या योग? लेकिन ये कठिन क्यों लग रहा है? सारे कल्प में हमने देह के माध्यम से प्यार किया, लिया, दिया। अब बिंदु समझकर वो बिंदु को प्यार करे थोड़ा सा कठिन है। अगर ये कला आपके पास है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं सकती है। कला को हासिल करना चाहते हैं ना? लेकिन मेरे पास जो प्यार है उसको मैंने बाबा को ही सौंपना है, किसी व्यक्ति वैभव के साथ शेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना भाई? हमारे पास महसूसता तो होनी चाहिए ना। कोई कुछ कहता है, जब तक उसको रियलाइज नहीं करते तब तक उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। क्यों बाबा से प्यार करना चाहिए बताओ ना? हाँ जी, अभी तो बताया। क्यों व्यक्ति के साथ प्यार नहीं करना है? लिखो फटाफट, पांच बातें लिखो फटाफट, टाइम हमारे पास कम है। पहली बात लिखो, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से हमने केवल धोखे खाए, केवल कड़वे अनुभव किए, माया ने फुटबॉल बना के पांचों खिलाड़ियों ने ऐसा पीटा, कहीं का नहीं रखा हम लोग को। कितने कड़वे अनुभव किए, कितने धोखे खाए। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, ट्रस्ट वर्दी लव है, रियलाइबल लव है, आत्माओं का प्यार विश्वास पात्र नहीं है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आत्माओं के प्यार में तो कितने कंडीशन, कितने कॉम्प्लिकेशन। किसी के साथ प्यार होता है तो चिट्ठा लिख के देती है सारी कंडीशन, पसंद है तो आगे बढ़ो, नहीं तो मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर पूरी नहीं होती तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। भगवान के प्यार में कुछ कंडीशन ही नहीं है। केवल बाबा कहते हैं मुझे क्या चाहिए, सच्चाई चाहिए, सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। बाबा कहते मेरे पास डंडा भी है, बता रहा हूं, थोड़ी हेरा फेरी किया ना तो डंडे से सजा दूंगा। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है, निस्वार्थ प्यार है और अविनाशी प्यार है। आत्माओं का प्यार में तो स्वार्थ है, बिना स्वार्थ कोई प्यार किसी से नहीं करता है। और बेहद का प्यार है, ये तो गागर है, वो भी खाली है, छलक रही है, ये तो सागर है। और तीसरी बात, निस्वार्थ प्यार केवल एक बाबा ही करता है और कोई भी नहीं इस दुनिया में करता है। अविनाशी प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, बेहद का प्यार है, इसलिए हमें बाबा से ही साथ प्यार करना है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का तो शरीर भी इम्प्योर है और आत्मा भी इम्प्योर है, तो प्यार करेंगे तो इम्प्योर बनेंगे ना। अभी टाइम ही है प्योर बनने का, है ना। पवित्रता का सागर है। और पांचवे बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। बाबा कहते टॉप क्वालिटी की आत्मा है ना, टॉप फ्लोर पर रहती है, ये तो थर्ड फ्लोर है ना, माया की दुनिया बन चुकी है। तो इन पांच बातों को रियलाइज अगर हम करते हैं तो हमें प्यार बाबा से सहज ट्रांसफर करना होता है। किसी व्यक्ति के साथ हम प्यार शेयर नहीं कर सकते हैं। प्यार से सबके साथ रहना है, क्योंकि प्यार के सागर के बच्चे हैं, लेकिन सच्चा प्यार, दिल का प्यार केवल उसके साथ करना है। हमारी दादियों के पास क्या था, हड्डी प्यार बाबा से था, जिगरी प्यार बाबा के साथ था, है ना दीदी। और पांचवी बात, ये मैं अपने इसके बारे में, शक्तिशाली योग के बारे में पांचवी बात, चौथी पांचवी शक्तिशाली योगाभ्यास अनुभव करने के लिए मन और बुद्धि हमारी खुशी से और नशे से भरपूर होनी चाहिए। ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर होगी तो परमात्म मिलन का मजा ही कुछ और आएगा। किसको मिल रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से मिल रहे हैं, कोई साधारण हस्ती नहीं है। तीनों लोगों में जिसका राज है, तीनों लोग जिसके इशारे पर चल रहे हैं, उसलिए सबसे बड़ी सर्वोच्च सत्ता के साथ मिल रहे हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती के साथ मिल रहे तो मन और बुद्धि खुशी में भरपूर होनी चाहिए ना। मन बुद्धि खुशी में और नशे में झूमती रहे तो फिर देखना शक्तिशाली योग की अनुभूति आपको होके रहेगी। अमृत वेले बैठते हैं, मजबूरी से बैठते हैं, लाल लाइट में एक घंटा बैठना है, नींद छोड़ के नियम बनाया बाबा ने 4 बजे उठो। योग करने के लिए मैं नहीं बैठी हूं, मैं तो भगवान के साथ, मेरी अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट का आनंद लेने के लिए मैं आत्मा बैठी हूं। इस उमंग के साथ आप बैठेंगे ना, इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा, बात मत पूछो। एक घंटा कैसे जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और सुस्ती होके बैठेंगे ना तो बार बार घड़ी देखेंगे, ओ कमलेश दीदी ने पता नहीं, कमलेश दीदी है ना, राजेश दीदी ने पता नहीं बैटरी आज डाली ही नहीं बराबर, बैटरी डाउन हो रही है और घड़ी बहुत स्लो चल रही है। टाइम कॉन्शियस बाबा कॉन्शियस बनना है, टाइम कॉन्शियस हो रहे। लेकिन जब उमंग के साथ बैठते हैं, मस्ती से बैठते हैं ना, एक घंटा कैसे जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अरे एक घंटा इतना जल्दी गया, समझा। तो सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे में, ईश्वरीय खुशी में झूमते रहें, उसके लिए हमें क्या करना है, समान के सिंहासन पर बैठे रहना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी आत्मा इसमें साधारण नहीं है। वो अनहार राजे महाराजे रॉयल परिवार की आत्माएं बैठी यहां, तालियां तो बजाओ जरा। एक भी आत्मा साधारण नहीं है, करोड़ों में सिलेक्ट किया है भगवान ने, हजारों लाखों में नहीं, करोड़ों में सिलेक्शन किया है। कुछ तो विशेषता देखा है तभी तो उसने हमें बनाया अपना, ठीक है ना। तो अभी हम बहुत सुंदर 15 मिनट बाबा की याद करेंगे, है ना, कुछ बजाएंगे थोड़ा, है ना। कुछ एक्सरसाइज करें, सब खड़े हो जाओ, डायरी वायरी सब हटा दो अभी, मेरा ब्याबा है कुछ भी बजा, हाँ फिर कमेंट्री करेंगे। खुद को शाबाश के दो जरा, चलो सभी बैठ जाओ, एकदम पावरफुल योग अभ्यास करेंगे। सब म्यूजिक, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ऐसे बूढ़े की तरह नहीं बैठो, ऐसे बैठो सीधा, और एक दो को टच नहीं करो शरीर, थोड़ा दूर बैठो, इधर खाली है इधर बैठो, एक दो को टच नहीं करना है शरीर को, नहीं तो संकल्प चलेंगे आपके। इधर आ जाओ, खुले में बैठो, दूर दूर बैठो। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जग मग रही हूँ, मस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों फैल है, मस आत्म ज्योति के चहुओं सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव है, भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ, सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता, मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्म ज्योति हूँ, मैं आत्म ज्योति शरीर रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर जा रही हूँ, उड़ती हुई जा रही हूँ, इस
विश्व के गोले से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ते हुए जा रहे हो, जा रहे हो। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गए हो, जहां चारों सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मज आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकी ली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस नारण कर ली है। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबल भी उनके ब्रुकुटी में चम चमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम स्नेह और अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूं, दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिखिलते बच्चे मैं बेहद खुश हूं, मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। जग मगती हुई आत्म ज्योति उड़ती हुई जा रही प्यारे घर परम धाम में पहुंच गए हो, जहां चारों सुनहरी लाल लाल सुनहरी लाल लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश शांति ही शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राण आधार
सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम मेरे दिलवर बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शक्तिशाली योग की अनुभूति कर रही हूं। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता को संपूर्ण एकाग्रता से देख रही हूं, देखती ही जा रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, मेरे मन की थकावट समाप्त हो चुके हैं, मेरा मन एकदम फ्रेश हुआ है, शक्तियों से भरपूर हो रहा है, एनर्जाइज हो चुका है। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म ज्योति डूबी रहूं, खोई रहूं, समाई रहूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन मंगल मिलन का भरपूर आनंद ले रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुके हूं। मुझ आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है, फैलती ही बढ़ती जा रही है, वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है, मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक, मौजम मस्तक मणि आत्मा से चारो फैल रहे शक्तियों के सागर, ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर निरंतर पड़ रहा है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों की किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रहे हूं, भरपूर आनंद ले रहे हूं। वारे में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है, भाग्य विधाता बाप से मैं भाग्यशाली आत्मा खजाने लूट रही हूँ, भाग्य लूट रही हूँ और लुटा रही हूँ। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु। ओम शांति शांति शांति। Thank you.
Yeah.